हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अक्षत नैना को आदित्य के घर छोड़ने गया। उसका मन नहीं हुआ कि नैना उससे दूर जाए, लेकिन अभी ज्यादा जिद करके वो उसे अपने पास रुकने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तो उनके रिश्ते की शुरुआत है। इस तरह जिद करके रोकने से कहीं नैना असहज न हो जाए और उसके बारे में कुछ और उल्टा सीधा ना सोचे, जबकि वो नैना को सच में बहुत प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ नैना अक्षत के साथ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अभी कुछ देर पहले अक्षत के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोच रही थी और सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी अक्षत की नज़र नैना पर पड़ी और उसे इस तरह बिना किसी बात के मुस्कुराते हुए देखकर अपने एक हाथ से उसके कंधे पर हल्के से टैप करते हुए पूछा, हे नैना, क्या हुआ? कहाँ खोई हो और क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही हो? वैसे तो कहाँ की प्यारी लगती हो मुझे तुम मुस्कुराते वक्त, लेकिन मुझे भी तो बताओ। अक्षत के इस तरह पूछने पर नैना थोड़ा सा झिझकी और दूसरी तरफ देखकर अपने आप को सामान्य करते हुए बोली, क्या तुम मेरी तरफ देख रहे हो? सामने देखकर कार चलाओ ना। सामने देखकर ही चला रहा हो, ये तो जल्दी जल्दी में मैं इस तरह मुस्कुराते हुए तुम्हें देखने को नहीं मिलता, तो बस सोचा थोड़ा सा मौके का फायदा उठा लूँ। नैना की बात का अक्षत थोड़ी शरारत से जवाब दिया। नैना उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और सिर्फ अपना सिर नीचे कर लिया। और तभी कार के बाहरी दर्पण में नैना को ऐसा लगा जैसे कि रात के इस वक्त उसे सुनसान सड़क पर कोई उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि उनके अलावा कोई और कार तो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उनकी कार की स्पीड से कम स्पीड में चलती हुई एक कार की एक झलक नैना को देखी थी, तो वो थोड़ा सा कार की खिड़की से झाँक कर बाहर की तरफ देखने लगी। उसके इस तरह देखने पर अक्षत फिर से उसी तरह मजाक करते हुए बोला, अरे अभी तुम्हारे जीजू का घर नहीं आया है, ऐसे क्या देख रही हो झांक कर बाहर? अक्षत की बात सुनकर नैना वापस ठीक से अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, अब कुछ नहीं, वो बस मुझे लगा कि। क्या लगा? नैना की अधूरी बात सुनकर अक्षत उससे पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना बिल्कुल भी निश्चित नहीं थी कि उसने सच में किसी कार को अपनी कार का पीछा करते देखा या फिर उसे सिर्फ वहम हुआ, इसलिए वो अभी अक्षत से कुछ नहीं कहती। अक्षत के उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और कार चलाता रहा। दूसरी तरफ डिनर करने के बाद भी सुनैना नैना के घर वापस आने का इंतजार करती रही, तो आदित्य उसे समझाते हुए बोला, नैना सेफ है, तुम्हारी बात हो तो गई है ना उससे, तो क्या हो जाएगा अगर आज वो अक्षत के साथ रुक जाएगी? आदित्य की बात सुनकर सुनैना उसके तरफ देखते हुए कही, अक्षत कपूर नैना दी के फ्रेंड है? वाओ, आई स्टिल कांट बिलीव इट, बट दी ने डायरेक्टली तो मुझे नहीं बोला कि वो आज वहीं रुक रही है। आदित्य की बात सुनकर अक्षत हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, कुछ ऐसे भी समझ जाना चाहिए। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा अनाड़ी हो इन सब में, सच में तुम्हें अभी तक यही लगता है कि अक्षत और तुम्हारी बहन सिर्फ दोस्त हैं? आदित्य के बात सुनकर सुनैना थोड़ी सी उलझन में सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया आदित्य किस बारे में बात कर रहा है और उसकी बहन। और ये सोचते हुए सुनैना कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोली और आदित्य तब तक ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। आदित्य सुनैना को वहीं उसकी सोच में डूबी हुई छोड़कर कमरे में वापस आ गया और फिर सुनैना कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलते हुए इधर उधर देखती है तो उसे आदित्य कहीं भी नजर नहीं आया। अरे ये कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। सुनैना इधर उधर चारों तरफ आदित्य को ढूंढते हुए एकदम धीरे से बोली। तभी स्वीटी वहाँ से निकलते हुए सुनैना को देखकर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भाभी, भैया को ढूंढ रही हो क्या? सुनैना स्वीटी पे पूछने पर बिना कुछ सोचे तुरंत ही बोली, हाँ वो अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। सुनैना के इस तरह बोलने पर अब स्वीटी हंसते हुए कही, ऊपर ही तो गए हैं अपने कमरे में, आपने सच में नहीं देखा क्या भाभी? यहीं पर तो थे आप, कहाँ खोई हुई हो आप इतना? स्वीटी की बात सुनकर सुनैना भी वहाँ से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी और फिर रुककर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम्हारे भैया हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर मैं उस बात को सोचने लगती हूँ और कुछ ध्यान नहीं रहता। सुनैना की बात पर स्वीटी कुछ नहीं बोली और उसी तरह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही और सुनैना सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई और फिर स्वीटी भी फ्रिज से पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। सुनैना सीढ़ियाँ चढ़कर आदित्य को ढूंढने के लिए ऊपर अपने कमरे में आई, लेकिन आदित्य उसे वहाँ कमरे में कहीं भी नजर नहीं आया। वो बाथरूम और कमरे की बालकनी भी चेक करती है, लेकिन वहाँ आदित्य नहीं था। तो सुनैना समझ गई, अगर यहाँ नहीं तो फिर जरूर वो अपनी स्टडी रूम में ही बैठा होगा, पक्का ड्रिंक कर रहा होगा। और ये सोचते ही सुनैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। और स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो सुनैना दरवाजे पर खटखटाते हुए कही, बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप दरवाज़ा खोल दो आदित्य, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, और अगर तुमने नहीं खोला तो। सुनैना लगभग चिल्लाते हुए ये सब बोली और उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य के हाथ में पकड़ी हुई बोतल छूटकर ज़मीन पर गिर गई। और वो नीचे टूटी हुई बोतल के टुकड़ों की तरफ देखकर अपने सिर पर हाथ मालते हुए कहा, अरे यार, ये क्या कर रही है अभी? अगर दरवाज़ा नहीं खोलूंगा तो भी आफत करेगी, और खोल दूंगा तो फिर ये सब देखकर और गुस्सा करेगी। आदित्य उस टूटी हुई बोतल की तरफ देखकर अपने मन में ये सब सोचा। और जब तक सुनैना 4-5 बार फिर से दरवाजे पर हाथ मारकर दरवाज़ा खोलने के लिए बोल चुकी थी, अब ये कोई नई बात नहीं थी, तो स्वीटी और गीता को भी इन सब की आदत हो गई थी। इसलिए वो दोनों ही अब पहली बार की तरह दौड़ते हुए ऊपर नहीं आई थीं, और उन्हें पता था आदित्य और सुनैना ये सब आपस में ही सुलझा लेंगे। इतनी देर सुनैना के इस तरह खटखटाने पर आदित्य जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ क्या कर रही हो? अब नैना का इंतज़ार नहीं करोगी? वहीं नीचे हॉल में बैठकर। आदित्य के बोलने के अंदाज़ में शिकायत और ताना दोनों ही बराबर नज़र आ रहे थे, और ये दोनों ही अंदाज़ सुनैना को बहुत अच्छे लग रहे थे। और वो आदित्य की छाती पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ धकेलते हुए स्टडी रूम के अंदर आते हुए बोली, अब तुमने बता तो दिया मुझे कि नैना दी वहीं रुकेगी, वैसे पूरी बात नहीं बताई, आखिर नैना दी और अक्षत कपूर, क्या सच में उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है? और अगर है भी तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता? सुनैना के हाथ अभी भी आदित्य के सीने पर थे और वो मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर उससे ये सब कुछ पूछती है। और उसके इस तरह पूछने पर आदित्य उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अनाड़ी नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है जो दिखाई देता है वो। अब तुम खुद ही सोचो कि इतनी रात तक तुम्हारी बहन किसी के घर में है, तो जाहिर सी बात है वो उस पर विश्वास करती होगी। और अभी 2 दिन पहले ही वो अक्षत से नाराज थी, लेकिन अब आज उसके साथ है तो फिर इतनी जल्दी अपनी नाराजगी कब भूल जाता है इंसान? सुनैना आदित्य की ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब देते हुए एकदम लापरवाही से उससे पूछती है, मुझे क्या पता?
मुझसे नाराज रह पाती हो तुम? आदित्य एकदम से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तो सुनैना की बोलती बंद हो गई और वो आगे कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ एक टक बिना अपनी पलके झपकाए आदित्य की तरफ ही देखने लगी। बोलो ना, क्या हुआ अब? आदित्य अपना चेहरा सुनैना के कान के एकदम पास लाकर धीरे से उससे पूछा, तो सुनैना को ऐसा लगा जैसे उसका गला एकदम सूख गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि ये सच था। आदित्य उसे चाहे जितना अनदेखा करे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बाद भी आदित्य ड्रिंक करता है, और उसके इतना पूछने पर भी कितने दिनों तक उसने सब कुछ सुनैना को नहीं बताया। लेकिन फिर भी सुनैना चाहकर भी उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती थी। मैं बिल्कुल हो तो जाती थी नाराज तुमसे, और इतना बोलते हुए सुनैना अपनी जगह से 1-2 कदम पीछे हुई और आदित्य उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ता रहा। और आदित्य ने अभी भी सुनैना का एक हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था और उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ उसके करीब ही बढ़ रहा था। और तभी सुनैना की एक तेज चीख निकल गई और वो एकदम से लड़खड़ा गई। आदित्य सुनैना का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन तब तक सुनैना का पैर टूटे हुए कांच की बोतल के कुछ कांच के टुकड़ों पर पड़ चुका था, और इस तरह कांच पैर में लग जाने से सुनैना को बहुत तेज दर्द हुआ था, और इसीलिए वो चीखी थी और लड़खड़ा भी गई थी। पैर में कांच के टुकड़े घुस जाने की वजह से सुनैना के पैर से खून निकलने लगा था और काफी गहरा कट लग गया था। आदित्य जैसे ही सब कुछ देखा, उसका जैसे दिमाग खराब हो गया और वो जल्दी से सुनैना को अपनी बाहों में उठाकर सोफे की तरफ ले गया और सोफे पर बिठा दिया। उसकी आंखों में इस वक्त पछतावे के आंसू थे और एकदम रोते हुए बोला, ओह गॉड, इतना सारा खून, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी गलती है और तुम्हें बहुत ज्यादा लग गया ना, ये सब मेरी वजह से ही। आदित्य सुनैना के पैर में हुए उस कट से निकलते हुए खून की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर पागल सा ये सब बोल रहा था, और सुनैना ने आदित्य को इतना ज्यादा परेशान पहली बार देखा था। और आदित्य को इस तरह से देखकर कुछ देर के लिए तो वो जैसे अपना दर्द भी भूल गई थी जो कुछ देर पहले उसे बहुत ज्यादा हो रहा था। क्रमशः